آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں رقیب نام ہمیں کہاں دکھتا ہے، کیونکہ قرآن سب سے خوبصورت چیز ہے. آپ اس کتاب کو محسوس کیجئے پہلے، القرآن جو اپنے اس مالک کے بارے میں ہمیں خبریں دیتا ہے. تو رقیب کا لفظ، یا آپ کہہ لیجئے کہ یہ نام، ظاہر راست دیکھیے تو تین جگہ، ایک اور اینگل سے دیکھیں تو چار، لیکن کل دیکھیں تو پانچ مرتبہ ہے. لیکن اس کے معنی قرآن کے ایک ایک صفحے پہ موجود ہیں. جی کیسے، آئیے دیکھیے گا. سورۃ نساء کی آیت نمبر ایک، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. آپ میں سے اکثر جانتے ہیں نا، اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے آیت. یعنی اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کے تعلق کے بننے کے وقت اپنے رقیب ہونے کو پیش کر رہے ہیں، کہ یہ نہ کہنا کہ کس نے کس کے حق مار دیے، کیا ہے کیسے ہے اور اس کی بات کس کی بات، اللہ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے. تم شوہر ہونے کے ناطے ظلم کر رہے ہو کہ زیادتی کر رہے ہو کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو، نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے. وہ تمہارے معاملات کو خوب 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 اچھی طرح سے جانتا ہے. اور حقوق العباد دیے ہی نہیں جا سکتے کسی دوسرے کو جب تک کر رقیب کی اس نگرانی کا یقین نہ آئے. کیونکہ رقیب وہ ہے جو اپنے بندوں کو ہر لمحہ دیکھتا ہے، اپنی نگاہ سے سب کو گھیرے ہوئے، ان کے احوال سے واقف، اس کے کھلے سے واقف، چھپے سے واقف. تو شوہر بیوی ایک دوسرے پہ ظلم کریں کیسے، اور ساس کیسے بہو پہ ظلم کرے اگر اس کو یقین ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. پر مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ خطبہ ہوتا ہے کس کو پتہ یہ آیت پڑھی گئی، اور کس کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سر پہ دوپٹے نہ ملیں تو ٹیشو پیپر رکھ لیتے ہیں راؤنڈ ٹیبل میں سے اٹھا کے، لیکن اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کبھی کسی رشتے کے ناطے کسی پہ ظلم نہ کریں. کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کے اس نام کو پہچان لیتا ہے نا، تو ہر وقت ہر لمحہ وہ رقیب کو اپنے پاس پاتا ہے. اس کو محسوس کیجئے، اتنا قریب جتنا وہ خود کہتا ہے کہ وہ ہوا ماں کم نہ ماں کن تم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. سورۃ حدید کی آیت 4 میں اللہ کا یہ جملہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یاد رکھیے کہ جتنا رقیب کی معرفت ہوگی نا، میں احسان کے درجے میں پہنچ کے کام کریں گے. دکھانا جو ہے اس کو، کوئی آپ کے گھر بڑا ہی کین آبزرور آ رہا ہو، کوئی چیکنگ ہو، کوئی گھر کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، کونے خدرے صحیح کر لیں گے. پھر آپ واقعی حدیث جبریل پہ عمل کریں گے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فلم تکن تراہ فانہ یراک. تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسرا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا اظہار کیسے کرواتے ہیں. سورۃ مائدہ 117، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس نام کا اظہار کر کے کیا بتائیں گے کہ اے اللہ، میرے جانے کے بعد تجھے پتا ہے کہ میرے فالوورز نے کیا کیا. اور تیسرا مقام لیجئے سورۃ الاحزاب 52، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بیدار مغز لیڈر بنا دے، سوئے نہ رہ جائیں. حضرت عمر کیسے چیزوں کو دیکھا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے. آج جو بڑے لوگ ہیں وہ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوں اور غریبوں کی جان پہ ہو. اور اسی طرح رقیب نے کچھ محافظ فرشتے رکھے ہوئے کس پہ؟ اب آئیے وہ آیت جو میں نے آپ کو شروع سے اپنے دل کی باتوں میں بتائی تھی، سورۃ قاف کی آیت نمبر 18، فرشتوں کے لیے یہ لفظ آئے یہاں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یہاں ہوشیار کے معنوں میں، یعنی بندے کی زبان سے ایک لفظ نکلے، اور بندہ نہیں بلکہ بندی بولتی ہوں، ایک لفظ بندی بولتی ہے، وہ غیبت کا ہے، وہ تانے کا ہے، وہ الزام کا ہے، وہ دل چلانے کا ہے، یا کسی کو خوش کرنے کا ہے. کہ ایک جملہ صرف آپ کا کسی کا دل خوش کر دے، کیوں نہیں بولتے آپ، اتنے کنجوس کیوں ہیں؟ بہن کی چائے کی تعریف، नौकर की खिदमत की तारीफ बस। लेकिन हम कहते हैं हाँ सर पे चढ़ जाएंगे तारीफें की, तो वो अच्छा लफ्ज़ शायद आपके बचाव का जरिया बन जाए। फिर अहादीस में अगर हम इस नाम को देखें तो पहली रिवायत आपके लिए रखी सिलसिला सहीहा की रिवायत 1356। आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला हर निगरान से इसकी राइयत के बारे में सवाल करेगा, इसने इसकी हिफाजत की या इसे ज़ाया कर दिया, हत्ता कि वो बंदे से इसके घर वालों के बारे में भी पूछेगा। कुल्लुकुम रायुन, शोहर बीवी बच्चे, ये एक ऐसी कहानी है कि इसको बंदा जब तक जिम्मेदारी के साथ से ना ले बात समझ नहीं आती। फिर एक और रिवायत सुनन तिरमिजी 2458 है, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, अल्लाह ताला से शर्मो हया करो जैसा कि इससे शर्मो हया का हक है। हमने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह से शर्मो हया करते हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। आपने फरमाया हया का ये हक नहीं जो तुमने समझा, अल्लाह से शर्मो हया करने का जो हक है वो ये है। अब नोट कीजिएगा और इसको आज के दौर में गैजेट्स को हाथ में रखने और बच्चों को देने से पहले दोहरवा दीजिए। क्या? अल्लाह से शर्मो हया का हक ये है कि तुम अपने सर यानी ब्रेन दिमाग माइंड और इसके साथ जितनी चीज़ें हैं यानी आंखें कान जुबान इन सब की हिफाजत करो, यानी जो देखो जो सुनो जो बोलो सब बताओ, और अपने पेट और इसके अंदर जो चीज़ें इनकी हिफाजत करो, और मौत और हड्डियों के गल जाने को याद किया करो, और जिसे आखरत की चाहत हो वो दुनिया की जेब व जीनत को तर्क कर दे, बस जिसने ये सब पूरा किया तो हकीकत में इसी ने अल्लाह ताला से हया की जैसा कि इससे हया करने का हक है। सुभान अल्लाह, क्या किरदार साजी होती है। इसके बाद किसी को डर रहता है कि अम्मी ना देख ले तो अब्बू ना देख ले तो मियाँ को ना पता लग जाए। तो अपनी आंखों को गलत चीज़ों से बचाइए, कानों को गलत चीज़ों से बचाइए, रकीब की नज़रें हैं आप पे, कोई देख रहा हो ना तो हमारी कैफियत बदल जाती है। मासी भी खूब रगड़ रगड़ के पोछा लगाती है अगर सर पे कोई खड़ा हो जाए, चले वो तो गरीब अनपढ़ औरत है बेचारी पैसे लेगी, हम तो समझदार लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं। फिर इसी तरह सही मुस्लिम 1432 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते आगे पीछे आते रहते हैं यानी हिफाजत के लिए, और नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं फिर चढ़ जाते हैं। वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास थे और परवरदिगार इनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। वो अर्ज़ करते हैं जब हमने इनको छोड़ा जब भी वो नमाज़ पढ़ते थे यानी सुबह की, और जब इनके पास गए थे तो तब भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सही मुस्लिम है 1432। क्या पता चला, अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने वालों की ये गवाहियाँ जाती हैं, और जो ये कहते हैं हमारी तो अभी नमाज का ही नहीं वक्त हुआ क्योंकि अभी ये तो फलां की नमाज है, और ख़ास तौर पर फिर असर की नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता इंसान के जी मेरे मसल की मस्जिद में भी नहीं हुई तो ये गवाही तो नहीं मिलेगी ना। तो नमाजों को वक्त पे रखना है। इसी तरह से फिर इस नाम से मुतल्लिक कुछ दुआएं और अज़कार हैं हमारे पास। सुबह शाम की दुआओं में इस नाम का बड़ा जिक्र है, तो सुबह शाम और रकीब को पुकारिए। कैसे पुकारेंगे? पहली रिवायत सिलसिला तो सहीहा की 525 पहली जिल्द है, हदीस नंबर 262 है, अल्लाहुम्मा बिका असबहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैका नुशूर। ए अल्लाह, तेरी ही हिफाजत में हमने सुबह की और तेरी ही हिफाजत में हमने शाम की, तेरे ही नाम पर हम जिंदा होते हैं और तेरे ही नाम पर हम मरते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है, यानी अर रकीब वो है जिसकी हिफाजतों में है और उसकी तरफ लौट कर जाना है। तो जब सुबह शाम सोच के पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह के अर रकीब होने का यकीन तो रहेगा ना। फिर रात को सोते वक्त देखिए दुआ अर रकीब की निगेबानी को महसूस करते हैं आप। सुनन तिरमिजी की रिवायत है 3395, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक ववज्जहतु वजही इलैक वलजातु ज़हरी इलैक वफव्वतु अमरी इलैक ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक उमिनु बिकिताबिका व बिरसूलिका। ऐसे नहीं लगता कि सुकून की नींद आएगी ये पढ़ने के बाद? नहीं समझ आए तो तर्जुमे पे गौर कर लेते हैं फिर और सुकून मिल जाएगा। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान तेरे सुपुर्द कर दी, हैंड्स अप कर दी है, मुकम्मल खुद सुपुर्दगी, बोनलेस मीट, जिधर मर्जी मोड़ ले जो मर्जी कर दे मेरे साथ। मैंने अपना मुंह औरों की तरफ से फेर कर तेरी तरफ कर दिया, मैंने अपनी पीठ तेरी तरफ टेक दी, मैंने अपना मामला तेरे हवाले कर दिया, तुझसे बचकर तेरे सिवा और कोई जाए पनाह और जाए निजात नहीं। मैं तेरी किताब और तेरे रसूलों पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह करे कि फिर उस रात बंदा अल्लाह की पनाह में ही रहे। तो क्या पता चला, सोते वक्त रकीब की निगेबानी में आपने खुद को दिया। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत 6901 में एक दुआ बड़ी प्यारी है, आप सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोहराइयाँ हो रही हैं आपकी तो दुआओं की, हर सीरीज़ में दुआएं तो चलती हैं माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली खतीयती व जहली व इसराफी फ़ी अमरी वमा अंत आलमु बिही मिन्नी। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली जिद्दी व हज़ली व ख़ताई व अमदी व कुल्लु ज़ालिका इंदी। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्खरतु वमा असरतु वमा आलन्तु वमा अन्त अलमु बिही मिन्नी अन्तल मुक़द्दिमु व अन्तल मुअख्खिरु व अन्त अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, मेरी ख़ताओं, मेरी नादानी और मेरे मामले में मेरी ज़्यादती को और जो सिर्फ तू जानता है इसको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, जो काम मैंने संजीदगी से किए और जो मजाक से सर अंजाम दिए, जो भूल कर और जो जानबूझ कर, और हर वो अमल जो मेरे नज़दीक गुनाह है, माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, मेरे पहले वाले अमल और बाद वाले जो पोशीदा और ज़ाहिरन अमल किए और जिन अमाल को तू मुझसे ज़्यादा जानता है, माफ़ फरमा। तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है और तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इतनी खूबसूरत दुआएं सिर्फ नबी सल्लम ही सिखा सकते हैं, हम तो अपने लफ्ज़ों में ये दुआएं मांग ही नहीं सकते। तो आप देखिए कि ये दुआएं आपका मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ती हैं। तो फिर अल मौइज़त अल हसना क्या है कि हर छोटा बड़ा अमल रकीब की निगाह में है। इसलिए हमें क्या करना है, दिल को यकीन दिलाइए इस बात का कि मेरा हर छोटा और बड़ा अमल अल्लाह की निगाह में है। दायमी निगरानी का एहसास होना चाहिए, कंटिन्यूस वॉचिंग। जैसे चाहो जियो, ये गलत तर्ज़ ज़िंदगी है, इसको छोड़ना पड़ेगा। नेकी और बदी में तमीज़ करके जीना पड़ेगा और दिखावा और रियाकारी नहीं करनी। कोई अमल भी किया तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो रकीब है वो आंखों की चोरियों और सीनों के राजों को जब जानता है वो बेनियाज, जानता सब कुछ है, तो फिर हमने उसके साथ अपने ताल्लुक़ को लाना है। और जब ये नाम समझ आ जाता है ना, तो इसका असर ज़िंदगी में क्या आता है। पहली बात यह है कि इस नाम को समझने के बाद हमारी ज़िंदगी से दो रंगी ख़त्म हो जाएगी, होनी भी चाहिए। आज से काम कीजिए इस पे, मुनाफ़कत दूर हो जाएगी और आप ज़िंदगी से मुनाफ़कत और दो रंगी यानी चलो तुम इधर को हवा हो जिधर की, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, दीन भी रखो दुनिया भी रखो। अल्लाह का तफतु में नून अभी बादल किताब ही बतक फ़रून अभी बात। तो इसका बेहतरीन तरीका, इस दो रंगी को निकालने का तरीका रकीब की मार्फत लीजिए। क्योंकि मुनाफ़कत आती है उस वक्त है जब बंदे को ये लगता है कि मेरे मामलात पे कोई निगाह नहीं रखता, और जिसके दिल में ये यकीन रच बस गया फिर वो कभी रकीब की निगाहों से नहीं छुप सकता। फिर उसका बातन भी रकीब के सामने ऐसे ही है जैसे ज़ाहिर है। फिर इसके बाद इस नाम के साथ ताल्लुक़ से लिखिए अपने मामलात की इसलाह कीजिए। ख़ानदानी विरासत के मसले, जायदादों के इश्यूज़, रिश्ते नाते छूटे छाटे और सब कुछ। फिर अपने ज़ाहिर और बातिन को एक जैसा बना कर रखिए। हकूकुल्लाह की तरह हकूकुल इबाद देने में भी एक्टिव हो जाइए। अपने माशर्ती मामलात में किरदार को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। और मामला चाहे सिर्री हों या ज़ाहरी हों, अख्फा क्यों ना हो, सब को अल्लाह की निगाहों से देखने। किसी को ये नहीं कहना कि अब तुम किसी को ना बताना, मैंने तो तुम्हें बता दिया। और याद रखिए, सिर वो राज की बात है जिससे इंसान बखूबी वाकिफ होता है और इसका इजहार किसी दूसरे से कर देता है। फिर ज़ुबान की नोक पे लाने के बाद वो इसको राज रखने की ख्वाहिश भी रखता है, लेकिन अख्फा जो होता है ना, वो छुपी हुई बात होती है जिसके इजहार के लिए अभी इसने अल्फाज का जामा भी नहीं पहना होता। और दिल के ख्यालात तो वो हैं जिसके बारे में अभी बंदे को खुद भी नहीं पता होता। तो रकीब आपके सिर को भी जानता, आपके अख्फा को भी जानता और आपके दिल की बातों को भी जानता है। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स ने आकर अपने वालिद की शिकायत की। आपने उस शख्स को बुलवाया, वो हाजिर हुआ। आपने पूछा, तुम मेरे पास आते हुए रास्ते में अपने दिल में अपने बेटे के बारे में क्या कहते आ रहे थे? वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, ताजुब हुआ उसको। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है, यदि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला पूछते हैं कि इससे सवाल करो कि ये दिल ही दिल में अपने बेटे के बारे में क्या कह रहा था। اس پر پھر اس شخص نے کچھ اشعار سنائے، کہنے لگا یہ وہ بات تھی جو صرف میرے دل میں اخفا تھی، یعنی اللہ کو بتاتی تھی اور واقعی کسی کو نہیں بتاتی کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہوں. تو کیسے رقیب ہمارے خفیہ معاملات کو بھی جانتا ہے؟ اور یاد رکھیے کیسے واقعات پڑھ کر پھر اپنے ایمان کو بھی بڑھانا ہے اور اس چیز کو محسوس کرنا ہے. اللہ بندے کے دکھوں کے وقت بھی رقیب ہوتا ہے اور بیماریوں کے وقت بھی، کیونکہ وہ انتجہر بالقول فإنه یعلم السر وأخفی، راز کی بات جیسے بھی کر دو اس کو پتہ ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت 7 ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، سورہ قاف کی آیت 16 ہے، جو پہلے پڑھائی نا اس کے ساتھ کی آیت ہے یہ بھی. تو جب آپ اللہ کی باریک بینی کو جان لیں گے تو سمجھ جائیں گے. اور یہی بات آپ روز سورت ملک میں نہیں رات کو پڑھ کے سوتے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ تو باریک بین اور باخبر ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر وہ ہماری خطاؤں کو دیکھ رہا ہے تو حسنات سے بھی غافل نہیں ہے. لکھیے اس نام کے ساتھ تعلق دل میں خوشی بھرے گا، کب؟ جب آپ چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں. لوگ آپ کو برا کہتے ہیں، آپ صحیح ہوتے ہیں، الزام لگتے ہیں، لوگ آپ کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، اور آپ سچے ہیں تو آپ زیر لب مسکرائیں گے. پھر اب اپنے دلوں کو خود دیکھیے، اور رقیب کا تصور کر کے خوشی آ رہی ہے کہ خوف آ رہا ہے، یہ آپ کی ایمانی حالت ہوگی. کیا دیکھ کے اٹھی ہیں ابھی؟ ایک دم کسی کو دیکھ کے اسکرین کیوں بدل دی؟ یہ فون کو کوڈ کیوں لگا دیا میں نے؟ آپ کو اچھے کام کر کے خوشی ہوگی، بروں سے پیچھے ہوگے. اور یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جب اللہ کو پہچانتے ہیں نا تو پھر وہ ایسی مثالیں بنتی ہیں. اور ایک واقعہ آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ ایک ان پڑھ چرواہا جو اللہ عزوجل کے نام اور رقیب سے واقف تھا، ایک دن جب بکریوں کو لے کر مدینہ سے باہر پھر رہا تھا تو عبداللہ بن عمر نے اس چرواہے کے ایمان کو جانچنا چاہا تھا اور ایک مکالمہ ہوا تھا. ابن عمر نے کہا لڑکے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو. چرواہے نے کہا یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے آقا کی ملکیت ہے. کہنے کا کیا ہوا؟ ایک بکری، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. تو اس لڑکے نے سوالیہ انداز میں حیرت سے عبداللہ بن عمر کو دیکھا اور سوال کیا، فعین اللہ، پھر اللہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے لڑکے کی ذہانت اور اس کے ایمان کی مضبوطی اور رقیب سے قربت کا تعلق. ابن عمر پر اتنی رقت طاری ہوئی، روتے ہوئے بولے فعین اللہ، فعین اللہ، فعین اللہ. شعب الایمان میں یہ موجود ہے، جلد 6 کے پیج 386 پہ، یہ واقعہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری ایک اور چیز اس نام کے ساتھ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس نام کی معرفت کے لیے کوئی آپ کا بہت بڑا عالم ہونا بھی ضروری نہیں. اس نام کی پہچان سے معمولی پڑھے لکھے لوگ، حتیٰ کہ بچے بھی اپنے دلوں کو آباد کر سکتے ہیں. یاد کیجیے وہ واقعہ جو عمر بن فاروق کے دور میں تھا، کہ ایک بچی جو دودھ میں پانی ملانے سے ماں کو روک رہی تھی، تو ماں نے جب کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہے ہیں تو کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو پتا تھا رقیب مجھے دیکھ رہا ہے. اب ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس آیت سے کچھ شعور مل رہا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں کی چوریوں تک سے واقف، اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپائے ہوئے ہیں، جو نگاہوں کی چوریوں کو پکڑنے والا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. سورۃ ملک میں کیا کہتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز میں، اللہ عزوجل کے ہاں یہ سب یکس ہیں. تو انسان تنہا ہو یا محفل میں ہو یا مجلس میں ہو، رقیب کی نگرانی میں ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے. سورت مجادلہ کی وہ آیت بھی یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، کہ جب تم تین ہو تو چوتھا وہ، چار ہو تو پانچواں. کوئی سرگوشی بھی کرتے تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا کہ تم کہاں کھڑے اور تم کس طریقے سے. اللہ تعالیٰ میں سورہ مجادلہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ نے اس بات کا احساس دلا دیا ہم سب کو کہ ہمارے رقیب کے نگاہ ہیں. آپ دیکھیے رات کے وقت ریڈ لائٹ پہ رک جاتے ہیں لوگ، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی پولیس مین کھڑا ہے؟ نہ نہ، یہ جو آیت بتائیے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 تھی. تو رات کے اندھیروں میں ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونے والے وہ کیمروں سے ڈرتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنے والے تنہائیوں میں گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ادھر تو ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑ ہو جائے، لیکن رقیب سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. آپ ظاہر مسکراتے چہرے سے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن دلوں میں کراہت کرتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتہ چلتا. آپ تکلفاً ملتے ہیں، لوگ آپ کو مخلص سمجھ لیتے ہیں. آپ اپنے فائدے لینے کی خاطر ملتے ہیں اور مخلص دکھاتے ہیں بن کے، لیکن اندر کھاتا کچھ اور ہوتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے، سیدھے سادھے بندوں کو پتہ نہیں چلتا. اور رقیب وہ ہے کہ جب کوئی مسافر लंबे सफर पे जाता है तो अपने घर वालों और अहलो याल को उसकी निगरानी में और उसकी हिफाजत में देता है कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो जा रहा हूँ, तू मेरी हिफाजत करना। सफर की दुआ याद कीजिए। अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफरि वल खलीफतु फिल अहलि, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन वासाइस सफरि व काबतिल मंज़रि व सूइल मुनक़लबि फिल माली वल आखिरि वल वलद। कि अल्लाह सफर में तू ही मेरा साथी है और मेरे पीछे मेरे घर वालों का तू ही निगरान है। मैं वापसी पे अपने घर वालों में, माल में, औलाद में कोई बुरी चीज़ ना देखूँ। और फिर जब रकीब का यकीन है तो नमाजों में खुशू आता है, मुदाफ़मत होती, ख़यानत नहीं होती, धोखा नहीं होता, रकू सजूद में चोरियाँ नहीं होती। क्योंकि अल्लाह फरमाते उतलुमा उखिया इलैका मिनल किताबि वक़िमिस्सला इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। फिर नमाज में जान निकल जाती है, फिर हकीकी ईमान और यकीन मिलता है, अल्लाह की कुर्बत मिलती है, अल्लाह की निगरानी यानी उसकी रकाबत में होने का एहसास बंदे को मुस्तकबिल में शर्मिंदगी से बचा लेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि वो ज़ात जिसने एक आँख पे दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, यानी 10 कुल फरिश्ते हैं लेकिन दो आँख पे भी हैं, कि इस आँख के अंदर कोई चीज़ ना चली जाए और देखो ये आँख देखती क्या है। तो दुनिया की कैमरों से डरने वाले, वीडियो से डरने वाले, कैमरे का रुख देख के खाने की प्लेट को छुपाने वाले, इस बात को याद रख लें कि अर-रकीब की निगाहें हैं। जिसने यूनस की तीन अंधेरों में पुकार सुन ली, समंदर के अंधेरे, मछली के अंधेरे और गम के अंधेरे थे, तो वो आपके मेरे भी हर मामले को जानता है, उसी को पुकारिए। जब यूनस अलैहिस्सलाम की पुकार गई तो फरिश्तों ने कहा, या रब्बी सौतु मारूफ उम्मी मकामे मुनकरिन, ए रब आवाज़ तो जानी पहचानी है, रिकग्नाइज्ड है, लेकिन जगह मालूम नहीं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अवला तारीफ़ ना हो, क्या तुम इसको नहीं पहचानते। ज़ालिका अब्दी यूनुस, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लामा सयूती ने रिवायत नकल की है सूरत निसा की तफसीर में। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे बेहतरीन काम ले लें। हमें किसी की जवाबदेही का कोई फिक्र नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल सीधे हो जाएं, क्योंकि वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही व यकूलून या वैलतना माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतं वला कबीरतं इल्ला अख्साहा ववजदू मामिलु हादिर वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कैसे अल्लाह ताला आपको मुझे सूरत काहफ 49 में हर जुमे को ये आयत पढ़ाकर यकीन दिलाता है कि लोगों से डरना छोड़ दो और रब के साथ अपने इस ताल्लुक को महफूज करो। बस इतनी सी बात है कि हम अपने नफ्स को ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की बजाय अल्लाह सुब्हान तआला की मर्ज़ी के मुताबिक चलाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। कि एक शख्स ने अपने नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया, एक आलिम के पास गया, कहने लगा मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताएं। तो आलिम ने हिकमत के साथ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि शायद वो खुद ही मान जाए और अपने नफ्स को लगाम दे ले। आलिम ने कहा ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन चार शरायत हैं। पहली बात यह कि जब नाफरमानी करने को दिल चाहे तो अल्लाह की ज़मीन से हट जाओ। तो नौजवान कहने लगा हाओ, ये कैसे होगा, कैसे जाऊँ, किधर जाऊँ, सारी ज़मीन उसकी है। इस ग्लोब को देख कर महसूस कीजिए ज़रा। फिर आलिम ने कहा क्या तुझे इस बात से हया नहीं आती कि तू इसी ज़मीन पर रहे और उसकी नाफरमानियाँ भी करे। दूसरी शर्त यह कि जब तुम्हें मासीयत करने का शौक आ जाए तो ऐसी जगह पर जाके करो जहाँ तुझे कोई ना देख सके। तो नौजवान ने बेबसी से कहा कि ये कैसे मुमकिन है, अल्लाह तो मुझे हर जगह देख रहा है। तो आलिम ने कहा कि फिर तुम्हें शर्म नहीं आती कि अल्लाह तुझे देख रहा है और तू नाफरमानी कर रहा है। तीसरी शर्त यह है कि नाफरमानी करनी है तो दूसरे दिन उसका रिस्क ना खाना। नौजवान कहेंगे फिर किसका खाऊं, कौन देगा, है ही वो। तो आलिम ने फिर आर्त दिलाई कि जिसका रिस्क खाते हो उसी की नमक हरामी करते हो। चलो फिर चौथी शर्त देख लो कि अगर तू ऐसा काम करना चाहते हो ना जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो दो फरिश्ते जो उसने तेरे ऊपर मुकर्रर किए ना, उनको थोड़ी देर अपने से दूर कर दो। नौजवान ने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं फरिश्तों को अलग करूँ। कहा तो फिर याद रख, तो अपने आप से मजाक कर रहा है। तो ये चार शर्तें आप और मैं भी अपने लिए लिख लें, क्योंकि कुरान कहता है वजात कुल्लु नफ्से माह साइकुम व शहीद। ये भी सूरह काफ की उसी आयत की कंटिन्यूशन में आता है कि हर शख्स उस हाल में क्यामत के दिन अपनी कब्र से निकलेगा कि एक हांक कर लाने वाला और एक गवाही वाला होगा, यानी एक हमारे साथ फरिश्ता साइक और एक शहीद, अच्छे और बुरे अमाल लिखने वाला। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरत क्यामत में भी कह दिया बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वलो अल्का माजीरा, बल्कि इंसान अपने नफ्स को खूब जानता है, चाहे जितने मर्जी उजर बहाने माजरतें पेश करे। लोग तो हमें सच्चा कह देंगे, हम नहीं खुद को कहेंगे। अरफल हमहा फजूरहा व तकवाहा, अल्लाह ने इंसान पर उसकी बदी और उसकी तकवा परहेजगारी इल्हाम कर दी है, यानी अच्छाई बुराई की पहचान फितरतन इंसान में रखी है। अल्लाह ने ज़मीर की शक्ल में जो आपके मेरे ऊपर रखा है इसको ज़िंदा रखिए, तो इंशाल्लाह बुरे से बुरे माहौल में भी सही होंगे। एक बच्चा भी आप देखिए कपड़े गंदे कर आता है या कोई ख़राब काम करे तो माँ का सामना करने से गुरेज करता है, मट्टी भी खानी हो तो छुपके खाता है। तो इंसान तो बहुत बड़ा है, अल्लाह ने उसको तो बहुत सारी अक़ल दी है। तो अल्लाह ताला हमें अरकीब के हर चीज़ पे मौजूद होने का एहसास दिलाए और हम अपने अज़ा की अदालत में ख़ुद को खड़ा करें। ये अल्लाह की निगरानी का एक तरीका कि हमारे जिस्म के अज़ा गवाही देंगे क़यामत के दिन। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तश्हदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहते हैं आज इनके मुंह बंद कर देंगे और इनके हाथ बोलेंगे, पाँव गवाही देंगे कि दुनिया में क्या कहते थे ये। सूरह यासीन आयत 65 है और फुस्सिलत 21 में आता है, वक़ालू लि जुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शैइन वहुव खलक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो जवाब देंगे हमें इस अल्लाह अज़्ज़ल ने बोलने की ताकत दी जिसने हर चीज़ को ताकत दी और इसी ने तुमको पहली बार पैदा किया और अब वापस उसी की तरफ लौटाए जाओगे। बातें तो बहुत सी हैं, वक्त रोज़ ख़त्म हो जाता है, बातें बुरी नहीं होती। चलें जो भी हमारे नसीब में अल्लाह उस पर राज़ी रखे। नेकियां कीजिए और खुशी महसूस कीजिए और गुनाह आ जाए तो रंज रखिए, तो इंशाल्लाह अरकीब आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरियों की तरफ ले आएगा। और अगर आज दुखी हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो फिक्र ना कीजिए, और रकीब आपके साथ है। ये भी एक यकीन कामिल है इंसान को अल्लाह पे कि अल्लाह रकीबी, अल्लाह मेरा निगरान, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह मुझे देखने वाला है, और अल्लाह शहीदुन अलैया, अल्लाह मेरे ऊपर निगरान है। इस एहसास में जियेंगे, जिम्मेदार इंसान होंगे, मिलावट धोखा जखीरा अंदोजी नाप तोल में कमी नहीं होगी, डॉक्टर दवाइयों के नाम पर कुछ और डिस्पेंसर कुछ और नहीं करेंगे, मौत के सौदागर नहीं बनेंगे, लोग बच्चों से ड्रग्स का काम नहीं लेंगे। एक औरत की वीडियो किसी ने भेजी, बच्चे पकड़ती है और बेचती है, कोई 35,000 का बच्चा तो कोई 50,000 की जोड़ी। ऐसे लोग कभी भी ये काम नहीं कर सकते, सूद कौन खा सकता है? कोई अपनी जिम्मेदारियों को गैर जिम्मेदारी से कैसे पूरा कर सकता है अगर उसको रकीब का नाम समझ आ जाए? अल्लाह ताला में इसकी तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।